ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी विशेष योग तपस्या कर रहे हैं। ये बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, जिसके लिए कहते हैं कण कण से तुम्हारी याद आती है। किसी भी स्थान पर चले जाओ, बाबा यहाँ बच्चों से मिलते थे, यहाँ विश्राम करते थे, यहाँ मुरली सुनाते थे, यहाँ बच्चों के साथ खेलते थे, यहाँ ब्रह्मा भोजन करते थे। मधुबन बेहद घर में आते ही हर ब्राह्मण बच्चे को बाबा के साकार चरित्र याद आते हैं। सब स्थानों की परिक्रमा करते हो ना, चार धाम गए हुए हैं, चारों धामों की यात्रा रोज कर रहे हो, योग लगाने की मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है। सहज योग, स्वतः योग, साकारी याद हम सबको अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराती है। साकार बाबा के साथ जो रहे पले, वो भी दिन अति प्यारे थे, और उसके बाद बाबा की अव्यक्त पार्ट के साथ, दादियों के साथ रहकर उनकी पालना में जो पले, उनका भी बहुत बड़ा भाग्य है। और अभी संगम के ये अंतिम समय में हम सब बाबा की सूक्ष्म सकास का, उनकी शक्तियों का एक स्थान पर बैठे भी अच्छा अनुभव करते हैं। बाबा अपने बच्चों की बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं लगता कि बाबा अभी नहीं आते हैं, चले गए। बाबा की अव्यक्ति पालना वतन से भी सभी बच्चों की हो रही है। बहुत अच्छी तरह से बाबा अपने बच्चों को वरदान भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, अलौकिक पालना है ये भी। जो जितना व्यक्त भाव से परे रहते हैं, उतना उस व्यक्ति स्थिति का अनुभव होता है। केवल दो ही बातें ध्यान पर रखनी है, एक व्यर्थ से आत्मा मुक्त हो जाए और दूसरा व्यक्त से मुक्त हो जाए। व्यक्त बातों को तो जानते हो, संसार की बातें, कहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कई बातें दुनिया की संसार की हैं और कई ब्राह्मण संसार की भी होती हैं। कोई कोई इन्हीं दोनों बातों में उलझे हुए रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, समझते हैं हम तो इसके नॉलेजफुल हैं, बहुत अच्छी समझ है, पता होना चाहिए, नहीं तो कहीं भी धोखा मिल सकता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, इस संसार के समाचार की नॉलेज रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ड्रामा कल्याणकारी है जो कुछ हो रहा है। अगर कोई बहुत साक्षी होकर के इस ड्रामा के दृश्य को देखे तो वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकता है। और अगर ड्रामा को देख करके प्रश्नों में उलझ जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये राइट नहीं है, कई लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों में उलझे हुए रहते हैं। और जब हम प्रश्नों में उलझ जाते हैं तो हमारी प्रसन्नचित स्थिति नहीं रहती। वो प्रसन्नचित स्थिति जिसमें कोई भी प्रश्न उठता ही नहीं है, बाबा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, और जो भी सीन चल रही हैं, दिखाई दे रही हैं, उसमें बहुत कुछ रहस्य भरे हुए हैं, कल्याण भरा हुआ है। तो मैं समझता हूँ आप सभी बिंदु लगाने का अभ्यास तो करते होंगे, लगती है बिंदु कि नहीं? कई बार लगाते हैं यहाँ और लगती है थोड़ी देर दूर। अगर कोई की बात, कोई की गाड़ी के अंदर ब्रेक ऐसी हो जो लगाएं यहाँ और लगे कुछ दूरी के बाद, तो कितना नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जब चाहें वो संकल्पों की गति को, व्यर्थ को स्टॉप कर लें। संकल्प तो सारा कलप ही चलते हैं, वो तो रुकते नहीं हैं, लेकिन मोड़े जा सकते हैं, स्टॉप किए जा सकते हैं, एक तरफ से रोक करके। ब्रेक लगाने वाले जानते हैं, ब्रेक लगाना माना गाड़ी खड़ी कर देना, ऐसा नहीं है, रोका और फिर अपने लक्ष्य की ओर मोड़ लिया, बढ़ गए। तो हम सभी भी इस नाटक के अंदर अंतिम सीन जो अति की ओर जा रही है, शरीर के हिसाब किताब भी अति की ओर जाते हैं, कई बार ब्राह्मण इसके हिसाब किताब में भी हलचल में आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो खुशी गायब होती है वो शरीर के हिसाब किताब के पीछे है। अनेक प्रश्न उठ जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, बीमारियां जब आती हैं व्यक्ति को तो उसकी खुशी रहती है, बाबा की याद रहती है, या सारा टाइम इस डॉक्टर को दिखाएं, ये दवाई करें, ऐसे ठीक हो जाएगा, इसे जो राय देता है उसको स्वीकार करके करने लगते हैं, सारा दिन उसी के चिंतन में चला जाता। और बाबा पाठ पढ़ाते हैं, बच्चे कोई हर्जा नहीं है, हिसाब किताब चुप्त हो रहा है, कर्जा उतर रहा है, कोई के कर्जे उतर जाते हैं तो उसको कितनी खुशी रहती है, होती है, भाई ये कर्ज उतर गया, हल्के हो गए, लाइट हो गए। लेकिन इतने जन्म में हमने क्या क्या किया होगा, देह मन के कारण, अधीनता के कारण, आत्मा से कितने भी कर्म हुए, पाप कर्म हुए, इंद्रिय सुखों में हम सब ने क्या क्या नहीं किया होगा, इंद्रिय सुख देह मन के कारण, या तो बोलने का, खाने का, ये दो सुख जो है ना। मैं एक जगह अभी अभी अमेरिका में, मैं अमेरिका से वापस आया हूँ परसों, तो एक मंदिर में प्रोग्राम था, सनातन मंदिर था, बहुत बढ़िया बनाया है, पुजारी अधिकतर बनारस के ही थे। एक जगह बनारस का मिला, एक जगह प्रयागराज का, एक जगह कुछ ऐसे, तीन चार मंदिरों में प्रोग्राम थे, ट्रस्टी भी ऐसे ही थे, उसके अध्यक्ष भी। मंदिर ऐसा बनाया था जिसमें सब देवी देवताओं की मूर्तियां थी, एक ही स्टेज पर सबको सजाया हुआ था, एक तरफ लक्ष्मी नारायण, एक तरफ राधे कृष्ण, बीच में राम सीता, लक्ष्मण हनुमान जी, गणेश जी, देवियां, श्रीनाथ, वेंकटेश नाथ, पता नहीं कितनी सारी, बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ मूर्तियां थी। तो उस मंदिर में मेरा प्रवचन रखा था एक घंटे का, तो मैंने कहा भाई आप सभी देखते हो ये देवताएं इतने पूज्य है, जिनकी हम सब इतनी पूजा कर रहे हैं, ये सब इंद्रिय जीत बने हैं, एक एक इंद्रिय जीत है, और आज हम उनको कितना भोग लगाते हैं, कितनी खातरी करते हैं। आज व्यक्ति को इंद्रियों के रस ने गुलाम बना दिया, और सबसे ज्यादा एक इंद्रिय नुकसान करती है। बाबा तो कहते हैं आंखें बहुत नुकसान करती हैं, ऐसे ना, साकार बाबा की मुरली में आंखों पर बहुत मुरलियां चलती हैं। लेकिन मैंने कहा उससे भी ज्यादा ये मुख की जो जीभ है ना, वो नुकसान कर रही है। एक तरफ संबंध बिगाड़ देती है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। अगर जबान पर, जीभ पर कोई का कंट्रोल नहीं है, जो आया खा लिया, जब आया खा लिया, तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और बिना सोचे समझे कहे निकल गया, बोल दिया, जीभ चल गई, तो कतरनी का काम भी करती है, संबंध बिगाड़ देती है। तो हम सब ने द्वापर युग से देह मान में आकर के इंद्रियों के गुलाम बन करके कई पाप कर्म किए हैं, जो हमें आंतरिक खुशी का अनुभव करने नहीं देते। क्षणिक सुख मिला, इंद्रिय सुख क्या है, थोड़े समय का, जिसको सन्यासियों ने भी कहा है काग विष्टा के समान। कौवा उसमें किचड़े में मुंह डालेगा और खुशी का अनुभव करेगा, ऐसे ही आज के संसार में व्यक्ति इन्हीं चीजों में सुख अनुभव कर रहा है, देखने के पीछे, सुनने के पीछे, खाने के पीछे, घूमने के पीछे, कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितनी मनी व्यर्थ कर रहा है। संगम युग पर हम सब इतनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो कोई रस खींचता ही नहीं है। मुझे कई बार कई जगह जाते थे, ये चीज ले लो, ये चीज ले जाओ, ये काम की है, इधर चलो उधर चलो। हमने कहा हमको तो बाबा के बच्चों से मिलना है, हम तो बाबा के सेंटर्स को देखने और बच्चों से मिलने आए हैं, हमें कोई मॉल वॉल में नहीं जाना है, हमें कोई चीज नहीं चाहिए, साथ में ले जाना नहीं। क्या देखेंगे दुनिया में, क्या है, साइट सीन तो देख ही रहे हैं। अब 5-6 घंटा ड्राइव करके अगर एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक जाना है तो साइट सीन तो दिखाई दे रही है, प्रकृति का सौंदर्य वो तो देख ही रहे हैं। लेकिन इंद्रिय सुख आकर्षित न करे, खींचे नहीं। संगम युग की तपस्या यही है जो हम सब इंद्रिय जीत बन जाए, न आंखों का रस, न कानों का रस, न मुख का रस, न घूमने फिरने के पैरों का रस। बहुत सारे रस हैं जो आत्मा को भटका रहे हैं। वो अतीन्द्रिय सुख जो गोप गोपियों का गाया हुआ है, वो कैसे अनुभव किया उन्होंने। आप सबने भगवत भागवत देखी, पढ़ी हुए, सुनी है, भारत के अंदर तो सब प्रचलित है, सब शास्त्र। तो भागवत में दिखाते हैं कि गोप गोपियां जब भगवान के साथ, श्री कृष्ण के साथ रास करती थी, उनको, उनसे मटकी फुड़वाती थी, उनको छेड़छाड़ करती थी, तो बड़ा मजा आता था, उसका आनंद का अनुभव करती थी, खुशी का अनुभव करती थी। तो उद्धव जो था ना, उसको बड़ा खराब लगता था। उद्धव ज्ञानी था, नॉलेजफुल था, उसको पता था अरे ये भगवान है, ये तो गोपियां इसको पहचानती नहीं है, इसलिए इसको नचा रही हैं, इससे छेड़खानी कर रही हैं। तो उसको बहुत चिढ़ लगती थी उद्धव को देख देख करके। तो हमारी दीदी मनमोहिनी थी ना यहाँ पर, दीदी जी, तो हम सब पहले पहले जब योग करते थे तो कहती थी तुम उद्धव बन के योग कर रहे हो क्या दीदी, उद्धव क्या होता है। अरे उद्धव बन के योग नहीं करो, गोपी बन के योग करो। दीदी का नाम गोपी था, और गोपी तो मस्तानी, बाबा कहे और नयन गीले हो जाए, बाबा के प्यार में खो जाए, मगन हो जाए। और जो उदय होते हैं वो तो योग लगाते हैं, मैं आत्मा हूँ, परमधाम में निवास करती हूँ, परमधाम में परमात्मा का निवास है, ज्ञान का चिंतन ही करते रहते, अनुभव ही नहीं कर पाते। तो बाबा कहता है, अरे अनुभव करना है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो सुखे सुखे योगी नहीं बनना, रमणीक बनो थोड़ा। बहुत प्यार से बाबा मिला, संसार मिला, और क्या चाहिए। कभी कभी बातें तो करो बाबा से कि सूखा सूखा योग करते हो। जो सूखा सूखा करते हैं ना, जो अमृत वेले बैठेंगे, 5 मिनट में उनका योग पूरा हो जाता, बस सोचते अभी क्या सोचना है, फिर शांत स्वरूप हो जाते। ऐसे शांत स्वरूप नहीं होते हो ना, बातें करो, भगवान मिला है, इतनी अच्छी प्राप्तियां कराई है, इतनी अच्छी पालना दे रहा है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, हर कार्य के लिए अमृत वेले से रात तक उठने की, बैठने की, चलने फिरने की, खाने पीने की, सब की श्री मत दे रहा, श्रेष्ठ मत मिल रही है। अगर सचमुच कोई बाबा की इस संगम युग की पालना का चिंतन करे, सुमिरन करे, याद करे, तो अतीन्द्रिय सुख अपने आप अनुभव होने लगता है। ऐसे लगता है, मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं जा रहा था ना यहाँ से विदेश यात्रा पर अमेरिका की, तो 21 घंटे फ्लाइट पर था, 21 घंटे फ्लाइट, और वो भी हमको पता नहीं था, इकोनॉमी में 3 सीट के बीच में इतनी सीट हमको मिलती है इकोनॉमी में, और 17-18 घंटा एक साथ उसमें बैठना है। पहले बॉम्बे गए, बॉम्बे से दुबई गए, दुबई से सीधा डैलास। अब जब दुबई तक गए तब तक तो ऐसा लगा आप नहीं जा पाएंगे, लगता शरीर साथ नहीं देगा, सीधे टाइट हो गए एकदम। उसके बाद हमने कहा, मन को भी बाबा कहता है जैसा चाहे वैसे एडजस्ट कर सकता है। अब हम सब, हमने बाबा को कहा, बाबा पहुंचना तो है ही, भले 17 घंटा 18 घंटा भी यहां से बैठना दुबई से, मैं आपके साथ अभी 18 घंटा योग करूं, मिलन मनाऊंगा। मैं आपको क्या बताऊं, मैं बैठा, जब आंख खुलती थी तब वतन में होता था, और जब आंख बंद होती थी तो स्लीप, बिल्कुल डेड साइलेंस। और प्लेन में भी ऐसा लगता था 350 लोग उसके अंदर है, कोई बोल ही नहीं रहा, एकदम सन्नाटा जैसा लगता था। कैसे मैं वो सफर क्रॉस किया, और जाते ही मैं स्नान किया और मेरे क्लास शुरू हो गए। जेट लाइट क्या, फलाना क्या, मुझे कुछ पता नहीं, जाते ही रिट्रीट शुरू हो गई। 80 लोग बैठे थे वहां इंतजार कर रहे थे, 3 दिन की रिट्रीट भट्टी, क्लास पर क्लास, अमृत वेला भी कराओ, मुरली क्लास भी कराओ, क्योंकि सबको पता था राजीव भाई माना मुरली वाला। मैंने 35 दिन की यात्रा में शायद 2 दिन मुरली नहीं सुनाई, टोटल सभी जगह पर मुरली सुनाई, टोटल सभी दिन अमृत वेला कराया, हर स्थान पर, कमरे में बैठ के नहीं किया। इतने अच्छे अच्छे अनुभव बाबा करा रहा था, ऐसे अंदर का सुख महसूस हो रहा था, कितना प्यारा परिवार मिला है। जब हम शुरू शुरू में यहाँ समर्पित हुए थे तो मुझे गांव वालों ने, अपने घर वालों ने बहुत कुछ कहा था, तेरे को कुछ हो गया क्या दिमाग को, तेरे पिता के पास इतनी प्रॉपर्टी है। हमारे पिताजी 3 भाई, उनके बीच में मैं इकलौता बेटा, 3 घर हैं, 3 की दुकान है, खेती है, तुमको हुआ क्या है जो वहाँ आश्रम में जाके रहेगा, बहुत कुछ लोग बोलते थे। उस समय तो मुझे भी पता नहीं था क्या हुआ, बाबा के घर में आ गए, रह गए, और काम क्या किया, धोबी घाट किया, सफाई किया घर की, बर्तन मांजे, रोटी बनाई, खाना बनाया चूल्हे पर, वो भी पाटे पर धोबी घाट किया। लेकिन बाबा उसका इतना फल देगा, इतना अनुभव कराएगा, कभी सोचा नहीं था। एक छोटा सा मिट्टी का घर छूटा और हजारों घर अपने हो गए, हजारों गाड़ियां सामने खड़ी हैं, भाई साहब मेरी गाड़ी में बैठो, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं घुमाऊं, मैं ले चलूंगा, गाड़ी घुमाने वाले, प्लेन में बिठाने वाले। लास्ट में तो इतनी बहन ने आकर के कोशिश की, मैं आपको बिजनेस क्लास में भेजूंगी। बहन जी क्यों चार गुना खर्चा करोगी, पहले 1 लाख का टिकट है, तुम 4 लाख और डालोगे ना? नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं तो इकोनॉमी में ही जाऊंगा, आप कोशिश नहीं करो। बहुत कोशिश की, फिर भी एक सीट भी खाली नहीं मिली, मिली नहीं उसको। मेरा कहने का भाव ये है, अगर हम बाबा के आगे बुद्धि से समर्पित हो जाते हैं, बाबा हमारी कितनी पालना करता है। बाबा की पालना में हमें पालना, समर्पित माना ऐसे नहीं घर बार छोड़ के बैठ जाओ, प्रवृत्ति छोड़ के बैठ जाओ, बुद्धि से मैं बाबा का, बाबा मेरा, यही अनुभव अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। ये परमात्म सुख है, इंद्रिय सुख नहीं है। गोप गोपियों को इंद्रिय सुख नहीं था, वो तो साकार स्थूल में दिखाया है, डांस किया, मटकी फोड़ी, वो किया, वो तो स्थूल में दिखा दिया, वो भी इंद्रिय सुख हो गया। इसलिए एक दूसरी बात कही है, योगी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है। अति इंद्रिय सुख इंद्रिय सुख में चेंज हो सकता है, लेकिन परमानंद का अनुभव, उस बाबा के उस प्यार में, स्नेह में समाने का अनुभव, वो आंतरिक खुशी है, वो उससे भी ऊंची स्टेज है उसकी, उसका हमें अनुभव करना चाहिए। चलते फिरते कर्म करते बस बाबा के साथ मिलन होता रहे, उनकी शक्तियों का अनुभव होता रहे, उनसे बातें होती रहे। हमारी तपस्या भी ऐसी नहीं है जो हम हट करें, एक स्थान पर बैठ जाएं, एक आसन लगा करके बैठ जाएं, खाना पीना छोड़ दें, देखना करना छोड़ दें, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसी तपस्या बाबा ने नहीं सिखाई। हर कर्म करते हुए भी कर्म के भान से परे रहने वाला, कर रहे हैं सब कुछ लेकिन कर्तापन का भान नहीं है, कराने वाला करा रहा है, ऐसा अनुभव, कराने वाला करा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, इतना निमित्त भाव निर्माणता बना, निर्माण बना देता है। और जो निमित्त और निर्माण आत्माएं हैं वही उस परमानंद का अनुभव कर सकती हैं। कभी भी चलते फिरते भी ये ना आए मैं कर रहा हूं, मैं बुद्धि वाला हूं, मैं समझदार हूं, मैं ज्ञानी हूं, कईयों को ये भी आता मैं बहुत अच्छा योगी हूं, मेरे योग की पावर बहुत है, जो योग करता हूं मेरे संकल्प से देखो ये विघ्न हट गया, ये ज्ञान में चल गया, ये अहंकार नहीं है क्या? ये भी तो सूक्ष्म अहम भाव है ना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आज ब्रह्मा बाबा इतना निरहंकारी बन के रहे, दादियां हमारी इतनी निरहंकारी बन के रही, कभी उन्होंने नहीं आया मैं कर रही हूं। एक दिन की बात बताता हूं, दादी जी लास्ट दिनों में जब उन्हें कर्मातीत होना था तो 2-3 साल मधुबन नहीं आई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पांडव भवन में आते थे तो सांस की तकलीफ हो जाती थी दादी को, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, दादी आप ऊपर नहीं रहो, आप नीचे ही रहो। और हम लोग रोज अप डाउन करते थे क्योंकि दादी जी नीचे हैं, कारोबार सारी नीचे हो गई, तो शाम को ऊपर आ जाते थे 6-7 बजे और सुबह 9 बजे फिर पहुंच जाते थे। तो एक दिन मैं सवेरे जब गया तो सबसे पहले मिलना होता था दादी से, मेरे मीना मिंडे अंदर नहीं जाना, वहीं मिलो आके पहले। तो जब मैं मिलने गया तो दादी ऐसे आंख बंद करके बैठी थी, मैं भी जाके बैठ गया बाजू, बहुत देर तक तो देखता रहा, मैं क्या सोच रही क्या कर रही, हिलाया हाथ थोड़ा, दादी मैं आ गया हूं। तो ऊपर से आया, हमने कहा हाँ दादी पांडव भवन में सब ठीक चल रहा है, हमने कहा हाँ दादी बहुत अच्छा चल रहा है, ज्ञान सरोवर ठीक है, अब जो कुछ पूछा उन्होंने, चार पांच प्रश्न, हमने कहा सब ठीक चला, सब ठीक चला। फिर दूसरा प्रश्न कह दे, कैसे चला है, क्या चला है? वो तो ठीक चला है, लेकिन कैसे चला है? तो मुझे बाबा की बात याद आई, हमने कहा दादी आप सब महान आत्माएं जो योग करती हैं, आपके जो श्रेष्ठ शुभ संकल्प हैं, उस शुभ संकल्पों की शक्ति से सारी यज्ञ की कारोबार बहुत अच्छी चल रही है। अब ये शब्द जब दादी ने सुने तो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी, क्या बोला? तो हमने कहा शायद गलती हो गई कुछ, दादी ऐसे बोला कि आपके संकल्प से ही तो सब चल रहा है इतना अच्छा, कितने शुभ संकल्प हैं आपके, सारी कारोबार यज्ञ की बहुत अच्छी चल रही है। कहती क्या गलती कर रहा है, मेरे संकल्प से नहीं चल रहा है, बाबा के संकल्प से चल रहा है। मैं क्या कर रही हूं, मैं तो बैठी हूं सिर्फ। इतनी निमित्त भाव में, इतनी निर्माण चित्त होके, जिसके अंदर मैं शब्द को उन्होंने गलाया हुआ था, वो अतीन्द्रिय सुख परमानंद की अनुभूति में मस्ती थी। वो कोई साकारी खींच नहीं, कोई चीज की खींच नहीं, इतना बड़ा यज्ञ कैसे चलेगा, इतनी कारोबार कैसे चलेगी, बाबा बैठा है वो कराएगा, इतना समर्पण भाव था। इसलिए वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव था, अंदर से एकदम प्रफुल्लित थी। कभी भी ये नहीं लगा मैं बीमार हूं, मुझे कुछ सेवा मेरी छूट गई है, मैं यहां नहीं जा पाती, वहां नहीं जा पाती, अरे मेरे को कुछ नहीं है, मेरे साथ तो बाबा है, हर पल बाबा मेरे साथ है, परिवार मेरे साथ है, सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। उन्होंने कभी अपनी खुशी गायब नहीं होने दी, कुछ भी आया हिसाब किताब चला गया। सुना होगा एक दिन मैं गया दादी के पास, मैंने कहा दादी अभी मैं आपके नाम का पत्र नहीं लिखूंगा। कहती क्यों नहीं लिखेगा, बहुत अच्छा लिखता है, तुम लिखो। दादी मेरी दिल खाती है, मैं प्रकाशमणि थोड़ी हूं जो मैं आपके नाम से सारे लेटर लिखता रहूं। पहले आप लिखाती थी, पढ़ती थी, अभी आपने छोड़ दिया, अब आप कहती हो आप लिखो, मैं तो नहीं लिखूंगा अभी। ऐसे बहुत समझाने कोशिश की, मैं एकदम जिद पर आ गया, मैंने मैं अभी नहीं लिखूंगा, आप लिखाओ तो लिखूंगा। तो हमारी गुलजार दादी आ गई उसी समय दादी के पास, क्या दोनों रूहरियान कर रहे। तो दादी कहती है अरे आज इसको पता नहीं दादी क्या हो गया, ये कहता है मैं पत्र नहीं लिखूंगा, पत्र पुष्प नहीं भेजूंगा, इसको बोलो इतना अच्छा लिखता है, सब खुश होते हैं, दादी की तरफ से जाता है पत्र। तो गुलजार दादी भी बहुत रमणीकता से बोले दादी आपको लिखाना तो चाहिए लिखाना तो चाहिए। अब दादी चुप, गुलजार दादी की बात को दादी कभी कट नहीं करते थे। तो गुलजार दादी ने बोला, मैंने बाबा ने बोला। अब मेरे को कहती अच्छा लिख, अब मैं कॉपी पेंसिल ले गया था, मैंने कहा लिखाओ। तो पहली लाइन में बोलती है लिखो दादी 100% ओके है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, आप ये क्या लिखा रही 100% ओके है, कैसे ओके है? आप बिस्तर पर हैं, आपको भी ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है, आप क्लास नहीं करा सकती, आप अभी बाहर नहीं निकल सकती, बिस्तर पर, मैं बिस्तर पर कहाँ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे क्या हुआ है, मेरे को पूछती मेरे क्या हुआ है, मैं क्या बोलूँ? मैं दादी ऐसे कैसे लिखें आप 100% ओके हैं? अरे मेरे को कुछ नहीं हुआ है, तुम लिख, ये तो डॉक्टरों का कुछ चक्कर होगा। पहले बोला डॉक्टरों का चक्कर होगा, फिर कहती है अरे 19-20 तो चलता है ना, 19-20 चलता है, हमें तो बाबा की दुआएं हैं, आप सब ब्राह्मणों की दुआएं हैं, इतना बाबा मुझे प्यार से रखता है, खुशी में रखता है, मुझे कोई दर्द है क्या, मुझे कोई तकलीफ है क्या जो मैं बीमार हूं? मुझे तो कभी नहीं लगता मैं बीमार हूं। और थोड़ी सी बीमारी किसी को हो जाती है, क्या सोचता है, कितना चिंतन करता है, क्या होगा पता नहीं। और दादियां ऐसे बेफिक्र वास्ता निश्चिंत, बीमारी का भी चिंतन नहीं। आप समझ सकते हो क्या होगा वो सुख, आंतरिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, उस सुख के अंदर वो बाबा से बातें कर रही है, मिलन मना रही है, उनके साथ का अनुभव कर रही है। कोई चीज की परवाह नहीं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बात की परवाह कुछ नहीं। सब बाबा बैठा है, बाबा कराने वाला है, वो करा रहा है। ये प्रभु लीला चल रही है। जानकी दादी हमेशा कहते, अरे प्रभु लीला चल रही है। जानकी दादी कभी कभी व्हील चेयर पर भंडारा घूम के आती थी, पूरा भंडारा देख के आती थी। और हम लोग बैठे होते थे मिलने के लिए, दादी के पास आती थी। अरे राजू, तुम कभी भंडारे में चक्कर लगाता है? दादी, क्या देख के आई आप, क्या भंडारे में चल रहा है? अरे देख के तो आ, भंडारे में तो प्रभु लीला दिखाई दी। ना क्या प्रभु लीला आप देख के आई? अरे इतने लोगों का भोजन बन रहा है, 20,000 लोग खा रहे हैं, कितना वैरायटी भोजन बन रहा है, कौन इसे बनवाता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, सब प्रभु लीला चल रही। देख देख के दादी इतना खुश होती थी, इतना अंदर से कराने वाला बाबा करा रहा है, प्रभु लीला चल रही। प्रभु लीला देखो तो आप खुशी में रहोगे, अतीन्द्र सुख और क्या है। झूमती थी सुख खुशी के अंदर, कभी भी उनके अंदर नेगेटिव बातें थी ही नहीं। हमारी खुशी को खत्म करने वाली नेगेटिव बातें हैं, उन्होंने देखा ही नहीं नेगेटिव क्या हो रहा है, क्या है। इतना बड़ा यज्ञ, इतना विस्तार को पा रहा है, इतने बच्चे आ रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं आराम से, वो देख देख करके खुशी का अनुभव करती थी। कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से आएगा, कौन कितना करता है, कई लोगों की नज़र उसी पर रहती है। जो करने वाला कर रहा है, कराने वाला करा रहा है, अगर ये सब चिंतन चल रहे हैं तो खुशी गायब होती है। सोचते रहते हैं पता नहीं कितना सहयोग मिलेगा, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, कहाँ से आएगा, कौन करेगा, कराने वाला ऊपर बैठा है, करा रहा है। हम तो खेल कर रहे हैं, हम तो कठपुतलियाँ हैं, नाच रही हैं, नचा रहा है वो, क्यों चिंतन कर रहे हैं जो हमारी खुशी गायब हो जाए। जब उतना बड़ा यज्ञ उसका चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न होना ही है, तो ये छोटी मोटी बातें हमारी खुशी को छीन क्यों लेती। गुलजार दादी की बात सुनाता हूँ, कभी कभी बहुत रमणीकता से कहती थी, बाबा के बच्चों से ज्यादा इन बातों को अकल है, बातों को इतनी अच्छी अकल है, बात आती है छुट्टी लेके चली जाती है, और बाबा के बच्चे उस बात को अपने पास पकड़ के रख लेते हैं, सोच सोच करके अपनी खुशी गायब कर देते हैं, अपना योग तोड़ देते हैं, व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं, शुगर बढ़ा लेते हैं, बीपी बढ़ा लेते हैं, बीमारियां आ जाती। बातों को अकल है, आई और चली गई, और बातों को सुना जिसने, वो पकड़ करके अपने साथ बैठ, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरी इज्जत ही नहीं है, मेरा मान ही नहीं है, उन बातों को सोच सोच करके बेचारा दुखी हो रहा है। तो खुशी गायब क्यों होती भाई? अतीन्द्र सुख में रहना तो क्या करना होगा, कोई बातों की परवाह नहीं करो। जहां संगठन है, जहां 4-6-8 भाई बहने रहते हैं, वहां कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत होता ही है, बातें तो होंगी, क्योंकि वैरायटी संस्कार हैं। बाबा क्या साकार में कहते थे, हर जंगल की, हर वन वन की काठी, सिंधी में कहते वन वन की काठी इकट्ठी की गई है। हर जंगल का अलग अलग झाड़ है, अलग अलग लकड़ियां हैं, उनको इकट्ठा रखा गया है, तो कोई टेढ़ी होगी, कोई मेढ़ी होगी, एक जैसे तो नहीं होंगी। जब बाबा ने इतना बड़ा परिवार बसाया है, हम 1,000-2,000 एक साथ रह रहे हैं, कोई बंगाल का है, कोई केरला का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई यूपी का है, कोई गुजरात का है, कोई बिहार का है, कोई कहाँ का है, पंजाब का है, तो क्या होगा, उसका खाना अलग, उसका पीना अलग, उसका व्यवहार अलग, उसके संस्कार अलग, उसकी पालना अलग। और बाबा ने एक परिवार में बांधा है, रखा है, तो वैरायटी न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन उस वैरायटी में होकर के भी हम एक होकर के रहें, भिन्नता समाप्त हो जाए, एक होकर के एक हर एक की विशेषता को देखें। बाबा ने हर एक की विशेषता को देखा और उसको उसी तरह से सेवा दी, इसलिए वो सफल हो गया। और हम अगर आपस में एक दूसरे की ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, ऐसे चलता है, ऐसे खाता है। कमी देखेंगे, कमजोरी देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे तो कभी खुशी में नहीं रह सकते। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो वाह 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 आपके बच्चे वाह, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के हैं। कांटों को चुन करके उनमें से फूलों को निकाला है, कांटों को फूल नहीं। ऐसे नहीं हम कांटे थे जग के, कहते ना जग के कांटों को चुन करके फूल निकाला है, उनको अलग कर दिया, कांटों को अलग कर दिया और फूलों का गुलदस्ता बनाया है। लगता है ना ऐसा रहता है, हम सब बाबा के वो फूल हैं जिनको बाबा ने चुन करके अपना बनाया, अपनी माला में पिरोया है। अगर हम एक दूसरे की विशेषता को जानते हैं, देखते हैं, वर्णन करते, भले कोई कितनी भी बातें किसी की सुना जाए, अगर उनको सुन लोगे तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी। अगर देखते हो कि देखो बाबा की नज़र इसके ऊपर पड़ गई, इस कोने में पड़ गई, इस कोने में पड़ गई। मैं आपको बताऊं, एक भाई था अमेरिका में एक जगह पर, जब मैं लास्ट में एक स्थान पर गया तो वो भाई बहुत बुजुर्ग था, ब्लैक काला वाला था, वही उसी अमेरिकन था, ये 85 साल का था और झुक गया था एकदम, कमर भी टेढ़ी थी, अकेले रहता था, अकेले। इतना बड़ा घर था, छोटी सी गाड़ी थी। जब हम गए, इतना खुश, इतना खुशी में डांस करने लगा, बैठे बैठे ही वाकर लेके चलता था। तो हमारे साथ 7-8 भाई बहने थे, हम अकेले नहीं गए थे। तो उससे ऐसे पूछ दिया कि इस घर की सफाई कौन करता है, क्योंकि वहां न सफाई करने वाले मिलते हैं, न भोजन बनाने वाले मिलते हैं, सब कुछ अपने आप करना है। शॉपिंग करना है तो खुद लेके जाना है। तो सबको संकल्प चले, इसकी इतनी उम्र है और ऐसे चल भी नहीं पाता है, अकेला रहता है, लेकिन उतना इतना निश्चय, इतना खुशी में रहता था, उसे चेहरे से लगता था इसको कोई गम नहीं। तो बहनों ने, हमारे साथ जो बहनें थी, उन्होंने पूछा, ये इतना बड़ा घर है, इसकी सफाई कौन करता है? बाबा करता है, मेरे साथ बाबा साथ में है, वो करता है। अरे इतना निश्चय से बोला। फिर हमने कहा, अच्छा भाई बाबूजी, भोजन बना के कौन देता है? अरे बाबा है ना हमारे साथ। इतना खुशी, इतना अंदर से अतीन्द्रिय सुख, बाइडन नाम था, कितने लोगों को कोर्स कराया, जो मैं बता रहा था उस नेपाली को, उसने कोर्स कराया, वो काले ने, अंग्रेज ने। एक नेपाल का युगल था, बाबा का बहुत अच्छा बच्चा बना है, उसके घर में मुझे ले गए थे, और बहुत बड़ी पोस्ट पर है वहां अमेरिका में। हमने कहा, आपको कोर्स किसने कराया, ज्ञान कहाँ से लिया? उसके मम्मी पापा भी वहीं आए हुए थे मिलने के लिए थे। तो उसने कहा कि हमको बाइडन ने कोर्स कराया। इतने लोगों को उसने ज्ञान में निकाला। हमने कहा, भाई ध्यान रखो, बूढ़ा हो गया अभी, उसको कौन देखेगा? कहता है, मैं उसको बोलता हूं। अब एक अनुभव उसने सुनाया मुझे, कहता है कि मैं एक दिन शॉपिंग करने के लिए गया, अपनी गाड़ी में धीरे धीरे चला के ले गया, शॉपिंग कर लिया, $140 का हमने सामान लिया। लेने के बाद जब पैसा देने लगा तो वो लेडी कहती है, मुझे गॉड फादर कह रहे हैं इससे पैसा नहीं लेना, इससे पैसा नहीं लेना। कहते, नहीं नहीं, मेरे पास है, मुझे गवर्नमेंट से मिलता है पैसा, आप ले लो, इसमें से ले लो। कहती, नहीं नहीं, हमको भगवान, आपका गॉड फादर कह रहा है इससे पैसा नहीं लेना। और मेरे से बिल्कुल उसने पैसा नहीं लिया, जिद किया, मैं पैसा आप तुमसे नहीं लूंगी, सब सामान ले जाओ, जो चाहिए तुम यहां से ले जाओ, मैं नहीं लूंगी, मुझे गॉड फादर मना कर रहा है इससे नहीं लेना। अब बताओ उसका योग क्या होगा, कितना बाबा से उसका जिगरी प्यार, हर काम अपने आप इतनी उम्र में भी कर रहा है, इतना खुशी में। न बाबूजी, आपका समय कैसे व्यतीत होता है? कहता है, मैं टीवी भी थी, मैं सब मधुबन की क्लासेस सुनता हूँ, आप लोगों की क्लासेस सुनता हूँ, इंग्लिश में सुनता हूँ, हिंदी इतनी नहीं आती थी, जानता तो था थोड़ा बहुत, लेकिन मैं मनसा सेवा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से, लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, कई चीजें भेजता रहता हूं, ईमेल करता रहता हूं, और जब समय मिलता है मनसा सेवा करता हूं। कभी भी मुझे व्यर्थ और साधारण संकल्प नहीं आते। क्या सुख का अनुभव है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इसको कहते हैं जिसमें जरा भी व्यर्थ का नाम निशान न हो। सब कुछ अच्छा है, बाबा बैठा है, ना उसको उम्र की चिंता है, ना खाने की चिंता है। बहन जी इतना पका के सब लेके गई थी, उसको 8-10 दिन का रख के आ गई टोलियां वगैरह। बाप जी खाते रहना, आप लोग बहुत ध्यान रखते हो, आप बहुत खातरी करते हो, आप मेरे पर क्यों बोझ चढ़ाते हो बताओ। कितना इंडिपेंडेंट, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, कोई लौकिक, उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी सब दूर दूर रहते हैं, कोई नहीं आता मिलने, क्योंकि वो ज्ञान नहीं मानते, किसी से फोन पर बात नहीं करता। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ब्राह्मण परिवार मुझे मिला है, ये अति इंद्रिय सुख में रहने की बहुत अच्छी विशेषता है। अगर जरा भी किसी देहधारी से लगाव है, झुकाव है, क्या करूं, बंधन है, बांध के रखा कईयों ने, बंधन में बंधी हुई आत्मा कभी खुशी का अनुभव कर सकती है? परवश है, पराधीन है, और पराधीन सपनों सुख नाही, सपने में भी उसको सुख नहीं। ध्यान देना, पराधीनता हमारी खुशी को छीनती है, इसलिए कभी भी पराधीन नहीं बनना, इंद्रियों के भी अधीन नहीं। और कोई भी बंधन में बांध दे संगम पर ब्राह्मणों को, एक धक से छोड़ो। कहीं उन्होंने तो क्या किया है, बाबा हमें तोते की कहानी सुनाता है ना, तोते की कहानी किसको किसको याद है, बाबा की कहता है, तोते जो बोलने वाले होते हैं ना, तो एक डाली पर बैठे थे, जो राहगीर उधर से गुजर रहे थे, देख रहे थे, तो बार बार कहते मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, डाली पर बैठे थे, छुड़ाओ छुड़ाओ कह रहे थे। तो उन्होंने सोचा, राहगीरों ने जरूर कोई ने बांध दिया हुआ है इनको, तो जब नजदीक जाके देखा तो उनको बांधा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने पंजे से डाली को पकड़ के रखा था। तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुमने बंधे हुए थोड़ी हो, तुम छोड़ो तो छूटो, उड़ो, छोड़ के देखो। जब पंजा छोड़ा उड़ने लगे, तो कई बार कईयों को कोई ने बांधा हुआ नहीं है, लेकिन अपने मन का जो कमजोर बंधन है वही डाली को पकड़ के बैठा है, और डाली को पकड़ के बैठा है, फिर दूसरों को कहो बाबा मुझे मदद करो, भाई बहने हमें मदद करो, हमें छुड़ाओ, मेरे बहुत बंधन है, मेरे बहुत बंधन है। तो बाबा क्या करेगा, मुस्कराएगा ही और क्या करे। बच्चे तुमने अपनी डाली खुद पकड़ के रखी है, कोई ने अपने संस्कार स्वभाव की डाली पकड़ के रखी है, कोई ने कोई देहधारियों को कोई ना कोई संबंध बना के रखा है, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो है, कुछ नहीं मेरा मेरा, लेकिन सारा फेरा मेरे का हो गया है, कौन सा आया था कौन सा जाता सब जानते हैं, लेकिन ऐसा बंधन बना के रखा है जो उसमें बंधे हुए हैं, करना पड़ेगा ना। बाबा कहता हाँ जरूर करो, करो अच्छी तरह से करो, बाबा क्यों मना करेगा, नहीं करो, छोड़ो तो छूटो। कई बार ऐसे बंधन हम अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। एक बहन थी शिकागो की टीचर, बड़ा अच्छा सेंटर, लौकिक में वो जॉब करते करते किसी से सने हुआ, उसने लव मैरिज कर ली, उसके बाद ज्ञान मिला, सरेंडर हुई, और ज्ञान मिलते ही सरेंडर होने के बाद वो जिससे प्यार किया, जो शादी किया, उसने शरीर छोड़ दिया, अचानक चला गया। अब शरीर छोड़ने के बाद जो उसके माता पिता था, उसको अकलौता बेटा होता, अब वो टीचर बहन आकर के तमिलनाडु में घर में बैठी, मैं जब वीजा लेने गया तो मेरे को मिल गई, हमने कहा मैं एक वीजा मिला, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आपके सेंटर पर से कहा वो भी मुझे जाना है। तब मैं कहानी सुनाने लगी, ऐसे ऐसे सेंटर पर मैं रह समर्पित हुई थी, दोनों हम सेवा कर रहे थे, भाई भी अच्छा था, युगल भी अच्छा था, वो अचानक शरीर छोड़ गया, अब उसके माता पिता की मुझे सेवा करनी पड़ रही है। हमने बहुत अच्छा बंधन तुमने बनाया है, कहाँ का बंधन, कहाँ फंस गया, अपने माता पिता नहीं, उस भाई के माता पिता का बंधन, क्या हिसाब किताब अचानक निकलते हैं और पकड़ के बैठ जाते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा करना हो, अरे हजार लोग सेवा करने के लिए निकल आएंगे, लेकिन वो जहां पर थोड़ा सा भी ममत्व है, ममता है, वहां पर वो बंधन बन जाता है। हम सबको बहुत ध्यान देना है, अभी अंत समय है, हमें कोई नया बंधन नहीं बनाना है, जो पुराने हैं उन तो हम योग बल से भोग करके कुछ करके काट रहे हैं, लेकिन नया नहीं क्रिएट करना, कुछ भी हो जाए। इसलिए बाबा कहता है नया बीज नहीं बोना, अभी कलयुग में बीज बंद, कलयुग का भोग बल की सृष्टि स्टॉप हो रही है। हम सबको ऐसा योग बल जमा करना है जो नई सृष्टि में हम मदद करें भगवान को। तो वर्तमान समय अभी देखना, सूक्ष्म में भी अगर कोई भी प्रकार का बंधन है तो खुशी का अनुभव नहीं होगा, चाहे संस्कारों का है, चाहे मन का है, चाहे संबंधों का है, चाहे किसी पदार्थ का है, साधनों का है, सुविधाओं का है, किसी भी प्रकार का बंधन। कईयों तो अभी तक भक्ति के बंधन में ही बंधे हुए हैं, गुरुओं के बंधन में बंधे हुए हैं, शास्त्रों के बंधन में बंधे हुए हैं। वो बंधन तो दुख देता ही है, बंधन खुशी का अनुभव नहीं कराएगा। इसलिए सूक्ष्म चेक करो, अगर मैं उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सेकेंड में बाबा से मिलन नहीं मना रहा हूँ, मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। बाबा ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी एक मुरली में, बच्चे जिस चीज का तुमको अभी तक अनुभव नहीं हुआ उस अनुभव के लिए तुम हठ करो, जिद करो, बाबा के सामने बैठ जाओ, मैं भोजन नहीं करूंगी, मैं नींद नहीं करूंगी, मुझे ये अनुभव कराओ पहले, अनुभव न हो तब तक बैठ जाओ। है लगन ऐसी, अगर कोई चीज का अनुभव नहीं है संगम पर, सिर्फ सुना है, सुना रहे हैं, सुना भी है, सुनाते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं किया, कहीं भी धोखा मिल सकता है, कभी भी माया का वार हो सकता है। जो आज चलते चलते ज्ञान से विमुख हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, उसका मूल कारण है ज्ञान था, सुनते थे, सुनाते थे, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी नहीं बने, अनुभव की कमी के कारण कहीं न कहीं किसी न किसी प्रभावों में आकर के, दबाव में आकर के भटक गए हैं। हम सब बाबा के बच्चों को स्वयं का अनुभव करना है, घर का अनुभव करना है, अपने अव्यक्त वतन का अनुभव करना है, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। जो अनुभव हमें नहीं अभी तक है उन्हें करने के लिए समय दो, कुछ त्याग करो, तपस्या करो, अनुभवी बन करके जाओ, बाबा के घर में बैठो, ऐसे चले जाओ एकांत में। एकांत का मतलब ये भी नहीं है छोड़ करके कहीं गुफा में बैठना, बाबा एक के अंत में बैठ जाओ, बैठे सबके बीच में उड़ जाओ बाबा के पास, ऐसी एकांत जैसे कोई है ही नहीं साथ, सबके बीच में है लेकिन वो यहां ही नहीं। तो जितना हम एकाग्रचित्त होकर के एकांत का अनुभव करेंगे उतना इस अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, अपने आप लगेगा मुझ आत्मा को जैसा सुख मिला है कोई को दुनिया में नहीं है। ऐसे नहीं दूसरे के सुख को देख के खुद दुखी हो जाना, कहीं ऐसा भी होता है कोई दूसरा सुख में होता है, मौज में रहता है, तो दूसरे देख के ईर्ष्या करते हैं, जल जाते हैं। बाबा कहता है तुम अपनी घोट नशा चढ़े, खुद को खुशी में रखने के लिए अच्छा चिंतन करो, अच्छे संग में रहो, निर्बंधन स्थिति का अनुभव करो, एक एक पल बाबा 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 उसके साथ बिताओ, तो अतीन्द्र सुख का अनुभव अपने आप होने लगे। जो प्रश्न आते हैं बाबा कहता है सब प्रश्नों का हल मैंने दिया है, सब कारण का निवारण बताया। कौन ऐसा ब्राह्मण है जिसको ये कारण है वो कारण है उसके निवारण का पता ना हो? जहां कोई कारण है, जहां कोई समस्या है, उस कारण का निवारण है, समस्या का समाधान है। केवल ब्राह्मण बच्चों को एक आधार कभी नहीं छोड़ना, वो है मुरली। बाबा की मुरली को अच्छी तरह से सुन लिया है, समझ गए हैं। कई कहते हैं हमने बार बार यही मुरली सुनी है, कितनी भी बार सुनो, जितनी बुद्धि स्वच्छ निर्मल होती जाती है उतना बाबा की बातों को हम सहज समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और उस स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इस आधार को कभी नहीं छोड़ना। सब कुछ सीख गए हैं लेकिन जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है, और बाबा की मुरली ही हमारी पढ़ाई है। जिस ब्राह्मण आत्मा ने मुरली पर अच्छा ध्यान दिया है कभी भी उसको मिस नहीं किया और कई बार पढ़ा। हमें दादियों ने कई बार पढ़ना सिखाया और ड्रामा में मुझे तो ऐसा भाग्य मिला है जो कितनी बार पढ़ा है, टाइप किया है, करेक्शन किया है, उसको सब सेट किया है। तो बाबा की मुरली आज तक भी एक दिन की भी मिस होती है तो ऐसे लगता है जैसे कुछ मिस हो गया। बहुत अच्छी तरह से बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलना सीख जाओ। ये ज्ञान का खजाना, मनन करना, चिंतन करना, सुमिरण में रहना, सब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और यही एक आधार है जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगा। बहुत पॉजिटिव संकल्प, बहुत अच्छे संकल्प, उनका खजाना मुरली है। योग नहीं लगता है, बाबा कहता अच्छी तरह से मुरली पढ़ के आओ। साकार में बाबा के समय आता है, हमारी सुरेंद्र दीदी बैठी है बताएंगे, कोई भी पार्टी अगर आती थी तो बाबा कहता था बच्चे बाबा से मिलने के पहले मुरली पढ़ के आओ। बाबा ने आज मुरली क्या चलाई, पहले पढ़ो फिर बाबा के पास आओ। हम ब्राह्मण कभी कभी पढ़ाई में अलबेले, कभी मुरली में अलबेले, कभी योग में अलबेले, अलबेलापन ही हमारी खुशी को गायब कर रहा है। इसलिए कभी भी अलबेले नहीं बनना, कभी भी आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी, बाबा कहते हैं तीन चीजें तुम्हारी बहुत बड़ी दुश्मन है। योग में आलस्य आता है, पढ़ाई में आलस्य आता है, कहीं मुरली लिखना शुरू करते कलम ऐसे ऐसे चल जाते, पता नहीं कहां की कहां लाइन निकल जाती, सुस्ती को भगाया है सभी ने कि जब शांति होती है ऐसे बैठते सुस्त, कुछ भी हो जाए अच्छा चिंतन जहां है वहां सुस्ती नहीं रहती, अच्छे बहुत खुशी के अंदर के आंतरिक खुशी के विचार चलते रहे, मन गदगद होता रहेगा, खुशी नींद भाग जाएगी, आलस खत्म हो जाएगा। इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहना, सदा खुश रहने के लिए अच्छे अच्छे विचार करो, खुशी के नशे के विचार करो, क्या हो रहा है क्या होगा वो बाबा जाने, मुझे कल की न चिंता है न काल की चिंता है। जिस आत्मा को कल और काल की चिंता नहीं वो खुशी में रहेगा, और जिसने चिंता को ऊपर लेके रखा है, ढो के रखा है, वो कभी खुशी में नहीं रह सकता। इसलिए बाबा कहता सब अच्छे से अच्छा होगा। जब कोई बोलता है कल क्या होगा तो दिल से उमंग से कहो कल बहुत अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा, भले महाविनाश होगा तो भी बहुत अच्छा होगा, एटम बम गिरेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी नई दुनिया जल्दी आ जाएगी, स्वर्णिम युग आ जाएगा, पुराना जाएगा तो नया आएगा। इसलिए कल क्या होगा उसकी क्या चिंता करना, बीती हुई बातें तो बाबा कहता है वो तो इतिहास बन गई, पन्नों में चली गई, आने वाला रहस्य है वो कोई जानता नहीं है। कम से कम वर्तमान में जीना तो सीखो, वर्तमान बाबा कहते गिफ्ट है, प्राइज मिली है, जो पल हमें मिले हैं वो जीवन के बहुत अच्छे हैं, इसको सफल करो। संकल्प, श्वास, समय, संपत्ति सब सफल होती रहे। वर्तमान अच्छा है तो वर्तमान का ही दर्पण कल है, भविष्य है, वो तो अच्छा होना ही है, कभी सोचने की जरूरत नहीं क्या होगा, सब अच्छा होगा। और काल हमारा क्या करेगा, कर सकता है कुछ? अजर अमर अविनाशी आत्मा है, काल से क्यों भयभीत, कुछ नहीं कर सकता है। बाबा ने अपने बच्चों को अमर बनाया है, अमर भाव के वरदानी है। शरीर जाएगा, नया मिल जाएगा, पुराना जाएगा, तो इसकी भी चिंता क्यों करें, संभाल करनी अच्छी बात है। संगम का अमूल्य जीवन है, ऐसे नहीं ऐसे हम कहीं खत्म कर दें, इसको बीमार कर दें, संभाल करो। लेकिन अटैचमेंट नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, अपने आप सब अच्छा होने वाला है। तो जो अच्छे अच्छे विचार करते हैं, जिनको कल और काल की कोई चिंता नहीं है, वर्तमान को जो सफल कर रहे हैं, वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो आप सभी ध्यान देना, हम सब बाबा के बच्चों को अगर अभी तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है, आंतरिक सुख है, आत्मिक सुख है, इंद्रियों से परे का सुख है, उस सुख का परमानंद का अनुभव, खो जाओ बाबा के प्यार में। अरे पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, ब्रह्मा बाबा का पहला पहला ये स्लोगन था, जिस दिन अनुभव हो गया, मिल गया जो दूर रहे थे, उस दिन बाबा ने कहा पाना था सो पा लिया का। ये हीरे का बिजनेस, ये पत्थर लगने लगे बाबा को, ये बिजनेस क्या करना, अब तो सच्चे हीरों का बिजनेस चलेगा। तो बाबा का वो नशा, वो उमंग, उत्साह, कितने कमाल किया, कितनी बड़ी सृष्टि रच दी। दादियों के उमंग उत्साह ने कितना बड़ा ब्राह्मण परिवार रच दिया। अगर उमंग उत्साह नहीं होता, बाबा चला गया अब क्या होगा, अगर उस समय सोच लेते 69 में दादियां सोच लेती, तो क्या यज्ञ इतना विस्तार को पाता। कहते तो यही थे ना, बाबा जाएगा तो हम सब चले जाएंगे। लेकिन बाबा का अव्यक्त होना और एक नया सेवा का दरवाजा खुल जाना, बहुत बड़ी बात थी वो, बहुत बड़ा पेपर था वो यज्ञ के लिए। लेकिन कैसे हमारी दादियों ने हिम्मत के बल से, बाबा के सहयोग और साथ से, उस पेपर को पेपर नहीं समझा, वो भी एक आगे बढ़ने का अच्छा साधन समझ करके आज यज्ञ को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं तो देखता था, देश विदेश में जाता हूं। मैं जब पहली बार गया था 2007 में अमेरिका में, बहुत थोड़े से स्टूडेंट मिले थे। अभी मैं 20-25 सेंटर पर गया 35 दिन में, सब जगह भरा हुआ क्लास मिलता, 150-200 तो होते ही थे, 125 से कम तो कहीं नहीं थे। सैटरडे संडे सब जगह रिट्रीट होती है, भट्टियां होती हैं। 20 विलेज के अंदर तो 180 भाई बहने 3 दिन की रिट्रीट कर रहे थे, भट्टी कर रहे थे। 20 विलेज, शिकागो, एटलांटा और डलास, 4 ही मुख्य सेंटर का निमंत्रण था। सैटरडे संडे उनको विशेष दिए, बाकी अलग अलग सेंटर्स पर जाना हुआ। बहुत अच्छी सेवा बाबा ने कराई, बहुत अच्छे अनुभव कराए। हम तो क्लास कराने बैठे हैं इसलिए अनुभव नहीं सुना रहे हैं, फिर भी बीच बीच में सुना रहे हैं कैसे बाबा अपना गुप्त कार्य वतन में रह करके कर रहा है। किसी को ये भाषणा नहीं आती कि बाबा चला गया, हमारी दादियां चली गई, अब कौन है। कभी कभी कोई कोई ये प्रश्न करते हैं, लेकिन अब जो है पहले से भी बहुत श्रेष्ठ है। सबको ही अनुभव हो रहा है, वतन से दादियां सबको नचा रही, हैंडल कर रही है। इतनी वृद्धि, इतना विस्तार कैसे हो रहा है, गाइड कर रही है अभी तक। दादी जानकी की कई जगह अनुभूतियां हुई लोगों को, हो रही है कि अभी भी कहती है ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, उंगली दिखाती है। तो अब वतन से जाकर के जिसके संस्कारों में सेवा भरी है, वतन में बैठ के नहीं करेगी क्या। भले वो कहीं जन्म भी ले लिया हो, लेकिन उनका संपूर्ण स्वरूप तो बाबा इमर्ज करता है ना, उस संपूर्ण स्वरूप से वो सेवाएं कर रही है। और बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स, जब मैं पहले गया था डलास में इतना छोटा सा सेंटर था, अभी गया तो 5 एकड़ में उन्होंने रिट्रीट सेंटर तपस्या धाम बना दिया, वहां पर रिट्रीट रखी 5 एकड़ जमीन में, 70-80 लोगों के रहने की व्यवस्था, वहां हाल बड़ा, और संभालने वाला कोई नहीं है, बहन केवल अकेली है, रंजन बहन, सब प्रवृत्ति वाली माता है, ऐसे समर्पित काम करती, रात को अपने घर चली जाती और दिन भर सेवा करती। एक युगल पता नहीं कहां से पहुंच गया जाकर के, शिकागो से, वहां ही रिट्रीट सेंटर के पास उन्हें घर ले लिया, और सारा ही रिट्रीट सेंटर वो संभाल लेता है। कहता है हम इसकी घास भी काटेंगे, इसकी सफाई भी करेंगे, हम आप बहने भले सेंटर पर रहो, बड़े सेंटर पर, मैं इस रिट्रीट सेंटर को देख लूंगा, संभाल लूंगा। कैसे कैसे बाबा के गुप्त बच्चे निकलते हैं। करण करावनार बाबा करा रहा है और प्रभु की लीला चल रही है। हम कभी कभी कहते हैं पता नहीं चले गए सब क्या होगा, अरे बाबा कहता सब बच्चे स्थापना का कार्य जब तक संपन्न नहीं हुआ है तब तक मैं वतन से कहीं जा नहीं सकता। अव्यक्त वतन से बैठ करके सारे परिवार की पालना हो रही है, वृद्धि और विस्तार हो रहा है, सबको बाबा और दादी हमारी गाइड कर रही हैं। इसलिए कभी भी ये संकल्प नहीं करना अब कौन है। बाबा का कार्य बहुत सुंदर चल रहा है और सुंदर चलना ही है, क्योंकि जब तक सतयुग नहीं आना है तब तक संगम की घड़ियां बहुत अमूल्य हैं। हम सब इसको सफल करें, कुछ भी व्यर्थ न जाए, इस पर ध्यान दो। कुछ भी व्यर्थ न जाए, न संकल्प व्यर्थ जाए, न स्वप्न व्यर्थ जाए, न संस्कार व्यर्थ जाए, न संपत्ति व्यर्थ जाए, न संगम का अमूल्य समय व्यर्थ जाए। अगर इनको हमने बचा लिया, सिर्फ चिंतन में रहे, कम संकल्प ऐसे नहीं, बहुत फास्ट संकल्प, अच्छे संकल्प भी फास्ट अगर है तो कुछ न कुछ व्यर्थ मिक्स हो जाएगा। इसलिए संकल्प की क्वालिटी देखो, अच्छे संकल्प भी ज्यादा क्यों सोच रहे हैं, जब सब अच्छा ही होने वाला है तो सोच सोच करके हम अपने दिमाग को भारी क्यों कर रहे हैं। इसलिए अच्छे संकल्प भी सीमित हो तो सिद्ध होने लगेंगे। तो अच्छे संकल्प की रचना करो जरूर, इसलिए बहुत अच्छे संकल्प आ रहे हैं, कई एकदम ओवर माइंड हो जाते हैं, ये करो ये करो ये करो, हैं अच्छे संकल्प लेकिन वो भी थका देते हैं। इसलिए संकल्प हमारे कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, जब चाहे हम स्टॉप करें, जब चाहे हम ऊपर पहुंच जाएं, इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओम शांति। चलो अभी हम सभी आधा घंटे आपके साथ योग करेंगे। सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो। बहुत खुशी और नशे के संकल्प करना, भगवान से मिलने जा रहे हैं, कोई इंसान से नहीं है, सबके पास पंख। बहुत अच्छी तरह से, अच्छे शुद्ध पवित्र संकल्पों से, इस साकार वतन से अव्यक्त वतन और मूल वतन की यात्रा करेंगे। थोड़े समय के लिए सभी बाबा को बहुत प्यार से कहो, बाबा ये अकाल तख्त आपके लिए है, आ जाओ, मैं आपके साथ कंबाइंड हो जाऊं। बाबा को आने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, बहुत पवित्र मन से, बहुत दिल से याद करो, तो बाबा के कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। सभी अपने चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का शरीर, पवित्र आभा मंडल के बीच मैं चमकती हुई मणि, अपने उस लाइट के शरीर से लाइट के वतन में अव्यक्त वतन में बाप दादा के सन्मुख हूं, बाबा के मस्तक से निकलती हुई पवित्र शक्तिशाली किरणें उनका वरदानी हाथ मुझात्मा को सर्वशक्ति संपन्न बना रहा है। मैं डबल लाइट फरिश्ता विश्व की सर्वात्माओं को शांति और सुख की सकाश दे रहा हूं। सर्वशक्तिवान बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझात्मा को शक्ति संपन्न बनाकर पूरे विश्व को पावन बना रही हैं। हर आत्मा शांति और शक्ति का अनुभव कर रही है। प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन बन रहे हैं। ये सूक्ष्म सकाश किरणों के रूप में चारों ओर फैल रही है। अपने निराकारी वतन में, मूल वतन में ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे एक चमकते हुए स्वरूप में स्थित होकर परमधाम घर की असीम शांति का, पवित्रता का, शक्ति का अनुभव करो। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, लेकिन उनके प्यार में समा जाती है। समा जाओ, खो जाओ।
मुझे तुमसे जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से ये दिल जानता है बाबा दिखता है जो नैनों के नूर से जो प्यार मिला मुझे तुमसे
के इस सायंकालीन सत्र में बहुत सुंदर विषय अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति उसको आपने समझा और अवश्य ही नुमा श्याम के योग में इसे अनुभव भी किया होगा। तो राजू भाई को एक हाथ हिलाकर न सिर्फ धन्यवाद लेकिन साथ साथ भाई जी का बहुत बहुत वेलकम, क्योंकि पूरा एक मास के बाद विदेश यात्रा करके लौटे हैं और पहली लॉटरी आपको लगी है। अभी 18 तारीख को ही आए हैं और पहली क्लास है उनकी विदेश यात्रा करके लौटने के बाद, और अभी लौटे ही नहीं थे, हमने मैसेज डाल दिया था कि आप आकर क्लास कराएंगे और हमने कहा हाँ या ना में सिर्फ जवाब दो, क्योंकि स्पीकर अगर ना करते तो फिर दूसरा फिक्स करना होता है। लेकिन बहुत तुरंत भ्राता जी ने ओके कर दिया और फिर हम भी निश्चिंत हो गए। तो भ्राता जी यूपी की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाल्यकाल से ही आपके घर में गीता पाठशाला होने के कारण ईश्वरीय ज्ञान आपके कानों में पड़ता रहा और उसी वातावरण में आप बड़े होते रहे, और 71 में आप पहली बार मधुबन घर में आए और वहाँ का मधुबन का वातावरण का बहुत रंग लगा, लेकिन अभी छुट्टी लेकर नहीं आए थे इसलिए वापस जाना पड़ा। लेकिन 1972 में जब आए तो छुट्टी आधी लेकर आए और तब से लेकर आज दिन तक इस मधुबन धरनी में रहते हैं। पूरे 60 साल कर लिए हैं आपने मधुबन धरनी पर रहते हुए। और जैसे आरंभ में तो विविध सेवाएं मिलती है मधुबन में मधुबन निवासियों को, करीब 5-6 साल आपने विविध सेवाओं में अपना योगदान दिया, और फिर 1976 से बाबा ने आपकी आपको एक विशेष सेवा के लिए नियुक्त किया। समझ सकते हैं आप कौन सी सेवा मिली होगी? मुरली की। हिंदी सिंधी में मुरली हुआ करती थी, उसे हिंदी में करना, टाइप करना और सारे सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना, ये जिम्मेवारी आपको मिली, जिस जिम्मेवारी को आप आज दिन तक बखूबी निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके पास जो पत्र पुष्प आता रहता है वो भी आप ही तैयार करते हैं, और समय समय पर मूल्यों के आधार पर छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी तैयार करते हैं, वो भी आपके ही अमूल्य प्रयासों से हम सबके हाथों में आती है। और दादियों के समय में दादियों के पास जो पत्र आदि आया करते थे उनका भी जवाब आप ही देते रहते हैं। और इसके साथ साथ आप मधुबन में फोटोकॉपी, स्टेशनरी आदि संभालते हैं, और चूंकि सारा ही दिन आपकी उंगलियां मुरलियां टाइप करने के लिए नृत्य करती रहती है तो वो सारा दिमाग में भी जाता है। तो दिव्य बुद्धि का वरदान भगवान ने आपको दिया है, ज्ञान के खजाने से भरपूर है, योग की अनुभूतियों से भरपूर है, इसलिए ज्ञान और योग को लेकर पूरे भारत तो क्या विश्व भर में भ्रमण करते हैं और सभी को बाबा के ज्ञान से लाभान्वित करते हैं। तो ऐसे अमूल्य रत्न जो विदेश सेवा करके लौटे हैं, बारंबार आपका स्वागत भी है और धन्यवाद भी है।